नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। JWS स्टील का कच्चे इस्पात का उत्पादन मई माह में एकल आधार पर 31% बढ़कर 17.89 लाख टन हो गया। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। मई 2021 में कंपनी का कच्चे इस्पात का उत्पादन 13.67 लाख टन था। कंपनी ने कहा कि उसके फ्लैट रोल्ड उत्पादों का उत्पादन 29% बढ़कर 12.84 लाख टन और लांग उत्पादों का उत्पादन 25% वृद्धि के साथ 3.86 लाख टन हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समक्ष पेश हुए। राहुल गांधी CRPF जवानों की जेड श्रेणी की सुरक्षा के साथ सुबह करीब 11:35 पर मध्य दिल्ली में APJ अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आईं। वो 11 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद मंगलवार रात 11:30 ईडी मुख्यालय से निकले थे। संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय के आसपास पुलिस और अर्धसैन्य बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है तथा आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पिछले 2 दिनों में ईडी कार्यालय में तकरीबन 21 घंटे पूछताछ हुई है। उनसे कई सत्रों में पूछताछ की गई और धन शोधन रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि गांधी से मंगलवार को पूछताछ पूरी नहीं की जा सकी, इसलिए उन्हें बुधवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर तरीकों को मंजूरी दी। इसके तहत 72,097.85 MHz स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई महीने के अंत तक की जाएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को ये जानकारी दी गई। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाली नए दौर की एप्लीकेशन मसलन मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम मेधा में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए निजी उपयोग वाले नेटवर्क की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया। विज्ञप्ति में कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके तहत जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72,097.85 MHz स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की घोषणा की है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देंगे। इसमें कहा गया, सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, ऐसा पहली बार हो रहा है। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जाएगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी। इसके अलावा बोलीदाताओं को 10 वर्ष के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का विकल्प भी दिया जाएगा। रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सपाट खुला और फिर 5 पैसे बढ़कर 77.99 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी से रुपये की धारणा प्रभावित हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 77.99 पर खुला, जो पिछले बंद भाव की तुलना में 5 पैसे की बढ़त दर्शाता है। मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया अपने सार्वकालिक निचले स्तर 78.04 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.28% गिरकर 105.21 पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.19% बढ़कर 121.40 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 4,502.25 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख और विदेशी निवेशकों की निरंतर बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को लगातार 4थे दिन गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 153 अंक टूट गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 153.25 अंक गिरकर 52,540.32 पर आ गया, जबकि निफ्टी 39.55 अंक गिरकर 15,692.55 पर था। सेंसेक्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, एचडीएफसी और नेस्ले गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। वहीं दूसरी ओर बजाज फिनसर्व, M&M, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस लाभ में कारोबार कर रहे थे। इससे पहले मंगलवार को 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 153.13 अंक यानी 0.29% की गिरावट के साथ 52,693.57 अंक पर बंद हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 42.30 अंक यानी 0.27% की गिरावट के साथ 15,732.10 अंक पर बंद हुआ था। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल और टोक्यो के बाजार मध्य सत्र के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि हांगकांग और शंघाई के बाजार लाभ में कारोबार कर रहे थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड 0.12% बढ़कर $121.35 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 4,502.25 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।